दिनेश और कशिश आपस में कुछ बात ही कर रहे थे कि उनके कानों में ईशान की सख्त आवाज पड़ी। क्या हो रहा है यहाँ? ईशान की आवाज सुनकर दिनेश और कशिश दोनों की निगाहें चौंकते हुए ईशान की तरफ घूम गई। ईशान को सामने देखते ही कशिश की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसे ईशान का डांटना, उस लड़की का साथ देना याद आ गया, जिससे एक बार फिर उसका मन गुस्से और कड़वाहट से भर गया। दिनेश तो कुछ कह ना सका, पर कशिश ने तुरंत ही ईशान को घूरते हुए जवाब दिया, दिखाई नहीं देता, लाइट लगा रहे हैं। कशिश का तलखी भरा जवाब, गुस्से की शिद्दत से सर्द लाल होता चेहरा और उसका बिगड़ा तेवर देखकर ईशान समझ गया कि वो अब भी उससे नाराज है। पर गुस्से में भी दिनेश के सामने कशिश का ऐसा रूखा व्यवहार उसे नागवार गुजरा। पर जनाब ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि ऐसा ही कुछ उसने भी किया था, और उसका बुरा कशिश को भी जरूर लगा होगा। खैर, अपने सर के सींग कहाँ किसी को नजर आए हैं, सांड तो दूसरा ही लगता है। ईशान आया तो था उससे प्यार से बात करने, पर कशिश के तेवर और दिनेश के सामने बात करने का ये रूखा अंदाज उसके गुस्से को हवा दे गया। अगले ही पल उसने कशिश को घूरते हुए उसी लहजे में जवाब दिया, दिखाई तो मुझे बहुत अच्छे से दे रहा है, पर लाइट तो दिनेश लगा रहा है ना, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी करूँ, आपसे मतलब? फिर कशिश का वही टकासा जवाब उसके मर्दाना गर्व पर थपेड़े जैसा पड़ा। गुस्सा अपने चरम पर था और शिद्दत की नाराजगी चेहरे पर उतर आई थी। कशिश पल भर को ठहरी, फिर नाराजगी से गाल फुलाते हुए बेहद रूखे अंदाज में उसने आगे कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए अपनी रसगुल्ले वाली के पास, वही तो आपकी अपनी है, तभी तो वहाँ उसकी इतनी तरफदारी हो रही थी और मेरी बेइज्जती की जा रही थी। कशिश का गुस्सा एक बार फिर उस पर हावी होने लगा था। उसकी घूरती निगाहें ईशान पर टिकी थी। इसकी वजह ईशान बखूबी समझ रहा था, पर उसे ये जगह उन सब बातों के लिए ठीक नहीं लगी। कशिश के गुस्से को भांपते हुए उसने अपना पारा कम किया और जरा शांति और ठंडे दिमाग से इस सिचुएशन को डील करने का फैसला किया। कशिश, इस बारे में हम कमरे में जाकर आराम से बात करेंगे, पर मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी और ना ही आपकी सड़ी हुई शक्ल देखनी है, इसलिए अपना चमगादड़ जैसा थोपड़ा उठाइए और यहाँ से चलते फिरते नजर आइए, और दोबारा मेरे सामने मत आइएगा, बेहतर होगा आपके लिए। कशिश गुस्से से भड़क उठी और गुस्से से जलती आंखों से ईशान को घूरने लगी, मानो अभी उसकी आंखों से धधकती अग्नि की लपटें निकलेंगी और ईशान का पूरा वजूद राख में तब्दील हो जाएगा। कशिश की बातें सुनकर ईशान की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कशिश, ये क्या तरीका है बात करने का? ईशान ने थोड़ा हैरानी और नाराजगी से उसको टोका, जिस पर कशिश ने कमर पर हाथ रखे उसे घूरते हुए जवाब दिया, मेरा यही तरीका है, और आपने ही तो मुझे सबके सामने बदतमीज कहा था ना, तो अब मुझसे तो आप तमीज की उम्मीद कीजिएगा ही मत, और अगर आपको खुद से जरा भी प्यार हो तो मेरी नजरों के सामने से चले जाइए, वरना गुस्से में मैं कहीं आपका सर ना फोड़ दूं। कशिश का गुस्सा पल पल बढ़ता ही जा रहा था। मामले की गंभीरता और बिगड़ते हालातों को मद्देनजर रखते हुए ईशान ने अब दिनेश को वहां से भेजना ही ठीक समझा, ताकि कशिश से आराम से बात कर सके। उसने गहरी सांस छोड़ी, फिर नजर दिनेश की तरफ घुमाई, जो आंखें फाड़े और मुंह खोले उन दोनों को हैरान परेशान सा देखे जा रहा था। दिनेश, मुझे कशिश से अकेले में कुछ बात करनी है, तुम अभी जाओ यहां से। वो कहीं नहीं जाएंगे, हम पहले से यहां थे, आप हमारे बीच आए और आते ही मेरा मूड बिगाड़ दिया, इसलिए आप जाएंगे यहां से। दिनेश के कुछ कहने से पहले ही कशिश गुस्से में घुर्राई। ईशान बेबसी से सर हिलाया, फिर दिनेश को आंखों से कुछ इशारा किया तो उसने सर हिला दिया और कशिश की तरफ निगाहें घुमाते हुए मुस्कुराकर बोला, मेरा काम हो गया तो मुझे चलना चाहिए, आप आराम से ईशान से बात कीजिए, पति पत्नी के बीच मेरा होना ठीक नहीं है, आई होप आप बात समझेंगे। दिनेश बेहद सुलझा हुआ और समझदार इंसान था, मियाँ बीवी की लड़ाई में उसका शामिल होना बात को और बढ़ा सकता था, इसलिए उसने वहां से जाना ही ठीक समझा। उसने बड़ी समझदारी दिखाते हुए इतना कहा और चुपचाप वहां से चला गया। कशिश उसे रोकने को कुछ कह ना सकी। दिनेश के जाने के बाद कशिश ने खंजर सी तेज खूनी निगाहों से ईशान को घूरा और गुस्से में पैर पटकते हुए खुद भी वहां से जाने लगी। पर ईशान अचानक ही उसके सामने आकर खड़ा हो गया और गंभीरता से बोला, कशिश, मुझे तुमसे बात करनी है। उसके इतना कहने की देर थी कि गुस्से से आग का धधकता गोला बनी कशिश एक बार फिर बिन मौसम बरसात जैसे बिना किसी वार्निंग के ही उस पर बरस पड़ी। मैं पहले ही कह चुकी हूं कि मुझे आपसे ना तो कोई बात करनी है और ना ही आपकी कोई बात सुननी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप इस बदतमीज लड़की के पास कर क्या रहे हैं। जाइए जाकर अपनी तमीजदार रसगुल्ले वाली से बातें कीजिए, वही तो आपकी अपनी है, मैं तो आपकी कुछ लगती ही नहीं। तभी तो वहां सबके सामने आप मुझे छोड़कर उसका साथ दे रहे थे, उसकी बात पर विश्वास करके मुझे उससे माफी मांगने को कह रहे थे। अगर मैं आपकी कुछ लगती होती तो विश्वास होता आपको मुझ पर, मेरी बात सुनते आप, मुझ पर विश्वास करते, मेरा साथ देते, ना कि उस गैर के लिए सबके सामने मुझ पर अविश्वास जाहिर करके मेरी बेइज्जती करते। पर आपने वही किया क्योंकि आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं, मैं आपकी कुछ लगती ही नहीं।
ये रिश्ता भी तो नाम का है। तभी आपको मेरी इज्जत की, मेरे मान सम्मान की रत्ती भर भी फिक्र नहीं। तो अब क्यों आए हैं आप इस गैर के पास? जाइए आप अपनी रसगुल्ले वाली के पास, उसके सामने जाकर बैठ जाइएगा, ताकि वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी परेशानी के इत्मीनान से आपको ताड़ सके, और मन करे तो रसगुल्ला समझकर आपको खा भी जाए। कशिश का छोटा सा दूधिया चेहरा गुस्से और अपमान की शिद्दत से सुर्ख रंग में रंग गया। गुस्से में नथुने फूल गए और इतना चिल्लाने के कारण उसकी सांस तेज चलने लगी थी। उसने एक बार में अपना सारा गुस्सा, अपने मन में भरी सारी भड़ास उस पर निकाल दी। ईशान खामोशी से उसकी सारी बातें सुनता रहा। आधी बातें तो उसके सर के ऊपर से चली गई थी, पर फिर भी उसने उसको बीच में टोकना ठीक न समझा। उसकी चढ़ी सांसों को देखकर ईशान जरा फिक्रमंद हो गया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए परेशान लहजे में बोला, कशिश शाह छुइएगा मत आप मुझे। कशिश बीच में ही उसका हाथ झटकते हुए एकाएक चीखते हुए पीछे हट गई।